नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के विचारों के आलोक में। उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। ये वो शाश्वत प्रश्न है जो हम सबके मन में कभी न कभी उठते हैं।
जी बिल्कुल। और पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य केवल दार्शनिक चर्चा करना नहीं था, वो चाहते थे कि इस समझ से हम अपने व्यक्तित्व को बेहतर बना सकें, अपने परिवार को सुसंस्कृत और समाज को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दे सकें।
हाँ, तो चलिए इसी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल तो यही है, ये जो इतनी बड़ी सृष्टि है, इतना सब कुछ चल रहा है, क्या इसका कोई बनाने वाला, कोई चलाने वाला है भी?
देखिए, पूज्य गुरुदेव का तर्क बहुत सीधा और व्यवहारिक है। वो कहते हैं कि हमारी जो बुद्धि है, हमारी इंद्रियां हैं, उनसे हम इस ब्रह्मांड का कितना सा जान पाते हैं? बहुत थोड़ा सा। अब सोचिए, हमारे छोटे छोटे काम, घर के काम हो या दफ्तर के, बिना किसी व्यवस्था, बिना किसी करने वाले के तो होते नहीं।
सही बात है।
और हमारा ये शरीर, ये कितना जटिल यंत्र
है ना?
पर बिना चेतना के, बिना जीव के ये क्या है?
कुछ भी नहीं।
तो फिर ये इतनी विशाल सृष्टि जिसमें सूरज, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र सब एक नियम से चल रहे हैं अरबों सालों से, ये बिना किसी महान चेतना, बिना किसी संचालक के कैसे संभव है?
ये तो बिल्कुल तर्क की बात है, जैसे घड़ी को देखकर घड़ी बनाने वाले का ख्याल आता है।
हाँ हाँ कुछ वैसा ही समझिए। ये जो नियमबद्धता है, सूर्य का उगना डूबना, ऋतुओं का बदलना, जीवन का चक्र, ये सब क्या है? ये एक बेहतरीन व्यवस्था की तरफ इशारा करते हैं। अब वैज्ञानिक इसे प्रकृति कह दें या प्रकृति के नियम, अध्यात्म की भाषा में इसी व्यवस्थापक, इसी संचालक शक्ति को ईश्वर कहा गया है।
तो मतलब ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक व्यवस्था है।
शक्ति भी है और उस शक्ति के पीछे की चेतना भी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम उसे इंद्रियों से शायद ना देख पाएं, पर उसके अस्तित्व को नकारना ठीक नहीं। जैसे हवा दिखती नहीं पर हम उसे महसूस करते हैं, उसके बिना जी नहीं सकते।
ठीक है, तो अस्तित्व की बात तो समझ आती है, पर फिर सवाल उठता है कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है? क्या वो हमारी तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं? कोई व्यक्ति है जो कहीं सिंहासन पर बैठे हैं?
पूज्य गुरुदेव इस आम धारणा से आगे जाते हैं। वो स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर मूल रूप से एक आद्य शक्ति है, मतलब वो फंडामेंटल एनर्जी या कॉन्शियसनेस जो इस पूरी सृष्टि का आधार है, कण कण में मौजूद है। यही शक्ति जड़ जगत में, यानी नॉन लिविंग वर्ल्ड में, पंचभूतों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के रूप में दिखती है।
अच्छा।
और चेतन जगत में, यानी लिविंग बीइंग्स में, यही शक्ति सच्चित आनंद के रूप में अनुभव होती है। सत यानी एग्जिस्टेंस, चित यानी कॉन्शियसनेस और आनंद यानी ब्लिस।
सच्चित आनंद।
और क्योंकि ये शक्ति हर कण में है, इसलिए ईश्वर सर्वव्यापी है।
बिल्कुल, अणु अणु में समाई हुई है वो शक्ति, इसीलिए ईश्वर कहीं एक जगह पर सीमित नहीं, वो हर जगह है।
पर अगर वो हर जगह है तो फिर हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? तीर्थों का क्या महत्व है? वहां कुछ खास अनुभूति क्यों होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जैसे आग तो हर जगह है ना, हवा में भी ऑक्सीजन है जो जलने में मदद करती है, पर उसकी गर्मी कहाँ महसूस होती है?
चूल्हे के पास।
हाँ, ये तो है।
या चुंबक को ही लीजिए, उसका क्षेत्र होता है, पर लोहे के पास लाने पर आकर्षण एकदम बढ़ जाता है।
ठीक है।
ठीक वैसी ही ईश्वर की चेतना तो सर्वव्यापी है, पर जहाँ पवित्रता होती है, जहाँ सत्य, प्रेम, न्याय, करुणा जैसे सद्गुणों का माहौल होता है, अभ्यास होता है,
यानी सत्वगुण।
हाँ, सत्वगुण, उन स्थानों पर या उन व्यक्तियों में वो ईश्वरीय चेतना ज्यादा स्पष्ट रूप से अनुभव होती है। तीर्थ इसीलिए महत्वपूर्ण माने गए कि वो ऐसे स्थान हैं जहाँ जाकर व्यक्ति अपने अंदर इन गुणों को जगाने की प्रेरणा ले सके, उस माहौल का लाभ उठा सके। अच्छा, तो ईश्वर से एक निराकार शक्ति नहीं, बल्कि वो मूल्यों से, सद्गुणों से भी जुड़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब एक और प्रश्न, कर्म का सिद्धांत। पूज्य गुरुदेव कर्म और ईश्वर के संबंध के बारे में क्या कहते हैं? क्या ईश्वर हमारे कर्मों में दखल देते हैं, किसी को ज्यादा, किसी को कम?
नहीं, बिल्कुल नहीं। पूज्य गुरुदेव के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था पूरी तरह से कर्म फल पर आधारित है। वो परम न्यायकारी हैं, समदर्शी हैं, मतलब सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं और निर्लिप्त हैं।
निर्लिप्त, इसका क्या मतलब हुआ?
निर्लिप्त मतलब डिटैच्ड। वो किसी के कर्म या उसके फल से सीधे तौर पर बनते नहीं हैं। वो जीवों को कर्म करने की स्वतंत्रता देते हैं। आप अच्छा करें या बुरा, ये आपकी इच्छा, लेकिन उन कर्मों का नतीजा क्या होगा, फल क्या मिलेगा, ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है। इसे समझाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने चित्रगुप्त का उदाहरण दिया है।
हाँ, वो जो कर्मों का हिसाब रखते हैं।
जी, ये एक प्रतीक है कि हमारे हर कर्म का, अच्छे बुरे का, एक तरह से लेखा जोखा रहता है और उसका फल देर सवेर मिलता जरूर है। ईश्वर इसमें कोई पक्षपात नहीं करते, ना ही किसी के कर्म को बदलते हैं। उनकी न्याय की व्यवस्था अटल है।
अगर ईश्वर निर्लिप्त है, मतलब उसे हमारे सुख दुख, हमारी प्रार्थनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ये पूजा पाठ, उपासना, ये सब क्यों? ईश्वर को प्रसन्न करने का क्या अर्थ हुआ?
यही तो सबसे क्रांतिकारी बात है पूज्य गुरुदेव के विचारों में। वो कहते हैं कि पूजा उपासना ईश्वर को खुश करने या उससे कुछ मांगने के लिए है ही नहीं,
तो फिर किस लिए है?
वो आत्म परिष्कार के लिए है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। ईश्वर तो स्तुति, निंदा, राग, द्वेष, इन सब से परे हैं। उन्हें ना हमारी तारीफ चाहिए, ना वो हमारी बुराई से दुखी होते हैं। ये जो हम अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां या चित्र देखते हैं, वो असल में ध्यान के लिए आलंबन है, एक मानसिक प्रतीक, जिसे पूज्य गुरुदेव ध्येय प्रतिमा कहते हैं।
ध्येय प्रतिमा।
हाँ, ताकि हम उन मूर्तियों या चित्रों से जुड़े जो महान गुण हैं, जैसे माँ दुर्गा से शक्ति और साहस, सरस्वती से ज्ञान, लक्ष्मी से समृद्धि और उदारता, शिव से वैराग्य और कल्याण, उन गुणों पर अपना मन एकाग्र कर सकें और फिर कोशिश करें कि वो गुण हमारे अपने जीवन में, हमारे स्वभाव में, हमारे कर्मों में उतरें। उपासना का असली लक्ष्य है अपने अंदर के सत्वगुण को बढ़ाना, अपनी आत्मा को शुद्ध और उन्नत करना।
वाह, तो उपासना का मतलब खुद को बदलना है, ईश्वर को नहीं। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है।
बिल्कुल, इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने सोहम साधना जैसी विधियों पर भी जोर दिया।
हाँ, स्वहम, इसका क्या मतलब है?
सोहम का शाब्दिक अर्थ है वो मैं हूँ, सो मतलब वह, परमात्मा, ब्रह्म, और अहम मतलब मैं, जीवात्मा। ये साधना अपनी उस छोटी मैं की भावना से, कि मैं बस ये शरीर हूँ, ये मन हूँ, इससे ऊपर उठकर अपनी उस असली पहचान, उस सार्वभौमिक चेतना वह के साथ एकता का अनुभव करने की प्रक्रिया है,
आत्म साक्षात्कार की ओर।
जी, ये महसूस करना कि जो दिव्यता, जो सत चित आनंद स्वरूप ईश्वर है, उसका अंश मुझ में भी है, मैं भी वही हूँ। ये स्वयं को ईश्वरमय बनाने की, अपनी सोई हुई दिव्यता को जगाने की साधना है।
तो अगर हम पूज्य गुरुदेव के विचारों का सार निकालें, तो ईश्वर कोई एक व्यक्ति या मूर्ति नहीं,
नहीं,
बल्कि वो सृष्टि का मूल आधार है, एक सर्वव्यापी चेतना है, एक शक्ति है। वो न्यायकारी है, कर्म फल देने वाली व्यवस्था है, पर स्वयं निर्लिप्त है, और उसका स्वरूप ही सत चित आनंद है।
और उपासना का असली मतलब ईश्वर को मनाना नहीं,
बिल्कुल नहीं, बल्कि उपासना का मतलब है खुद को उन दिव्य गुणों जैसे सत्य, प्रेम, करुणा, न्याय, पवित्रता से भरना, जो ईश्वर का ही स्वरूप है। ये खुद को बेहतर बनाने का, आत्मविकास का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीका है। आज की इस चर्चा से एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न उभरता है। अगर ईश्वर की सच्ची उपासना, जैसा पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं, बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा हमारे अंदर के गुणों को निखारने और निस्वार्थ भाव से कर्म करने में है, तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने फैसलों में इस ईश्वरीय चेतना को, इन सद्गुणों को और ज्यादा कैसे जी सकते हैं, कैसे प्रकट कर सकते हैं?
ये सचमुच सोचने वाला प्रश्न है।
इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।